ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपालकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ग्रंथाश्रम भागवतम स्कंद 8 पयोवर पूजा विधि का पालन करना श्लोक संख्या 24 महाराज सीक योर ब्लेसिंग्स श्री कश्यप उवाच एतन्मे भगवान पृष्टः प्रजाकामस्य पद्मजः यदाहते प्रवक्ष्यामि गतं केशव दोषणं समाधि तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरावेन भक्ति नाम समस्त प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की श्री कश्यप उवाच कश्यप मुनि ने कहा एतत् यह मैं मेरे द्वारा भगवान अत्यंत शक्तिशाली पृष्ठ पूछे जाने पर प्रजा कामस्य संतान की इच्छा से पद्मजः कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने यत जो भी आह कहा ते तुमको प्रवक्ष्यामि बताऊंगा व्रतम पूजा के रूप में केशव तोषणम जिसमें भगवान केशव तुष्ट होते हैं। श्री कश्यप मुनि ने कहा जब मुझे संतान की इच्छा हुई तो मैंने कमल पुष्प से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की। अब मैं तुम्हें वही विधि बताऊंगा जिसका उपदेश ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था और जिससे भगवान केशव तुष्ट होते हैं। तात्पर्य यहाँ पर भक्ति योग की विधि की और अधिक व्याख्या की गई है। कश्यप मुनि अदिति को उसी विधि का उपदेश करना चाहते थे जिसकी संस्तुति ब्रह्मा जी द्वारा भगवान को तुष्ट करने के लिए की गई थी। यह महत्वपूर्ण है। गुरु अपने शिष्य को उपदेश देने के लिए किसी नई विधि का निर्माण नहीं करता। शिष्य अपने गुरु से ऐसी प्रामाणिक विधि प्राप्त करता है जो उन्हें उनके गुरु द्वारा प्राप्त हुई होती है। यह शिष्य परंपरा कहलाती है। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजऋषियो विदुः भक्ति योग प्राप्त करने की यह प्रामाणिक वैदिक विधि है जिससे भगवान प्रसन्न किए जाते हैं। अतएव प्रामाणिक गुरु के पास जाना अनिवार्य है। प्रामाणिक गुरु वह है जिसे अपने गुरु की कृपा प्राप्त हुई होती है। इसी तरह वह गुरु भी प्रामाणिक होता है क्योंकि उसे अपने गुरु की कृपा प्राप्त हुई होती है। यह परंपरा पद्धति कहलाती है। इस परंपरा पद्धति का पालन न किए बिना गुरु से प्राप्त किए हुए मंत्र का उच्चारण निरर्थक होता है। यहाँ पे हिंदी में एक अनुवाद तो थोड़ा गलत लग रहा है। इंग्लिश इज सेड देयरफॉर टू अप्रोच अ बोनाफाइड गुरु और स्पिरिचुअल मास्टर इज एसेंशियल द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज ही हु रिसीव्स द मर्सी ऑफ हिज गुरु हु इन टर्न इज बोनाफाइड बिकॉज ही रिसीव्स द मर्सी ऑफ हिज गुरु। प्रामाणिक गुरु वह है जिसे अपने गुरु की कृपा प्राप्त हुई होती है। इस तरह वह गुरु भी प्रामाणिक होता है क्योंकि उसे अपने गुरु की कृपा प्राप्त हुई होती है। रिपीटेशन एंड एनीवे इट डजंट कन्वे द सेम मीनिंग जो इंग्लिश में दिया है। इस परंपरा पद्धति का पालन किए बिना गुरु से प्राप्त किए हुए मंत्र का उच्चारण निरर्थक होता है। आजकल न जाने कितने धूर्त गुरु हैं जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु भौतिक उन्नति के लिए अपने मंत्र गढ़ लेते हैं। किंतु यदि मंत्र गढ़ा हुआ रहता है तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। मंत्रों में तथा भक्ति योग में विशेष शक्ति होती है, बशर्ते कि उन्हें प्रामाणिक व्यक्ति से प्राप्त किया जाए। यानी गड़ा मतलब मैन्युफैक्चर्ड, निर्माण करने के लिए। और इंग्लिश का जो वो पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टू अप्रोच द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज ही हु हैज रिसीव्ड द मर्सी ऑफ हिज गुरु हु इन टर्न इज बोनाफाइड बिकॉज़ ही हैज रिसीव्ड द मर्सी ऑफ हिज गुरु। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा वैहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी शिलाधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक में कश्यप मुनि बोलना प्रारंभ कर रहे हैं अदिति माता की जिज्ञासा के बाद में। जो अदिति माता जिज्ञासा की, मुझे आप विधि बताइए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और मेरे पुत्रों सहित संकटपूर्ण स्थिति से उबार लें। जय श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महाराज की, जय श्री श्री राधा रानी का भगवान की, जय श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री प्रभुपाद की, जय। तो संडे सैटरडे को इस रुक्मिणी कृष्ण ने बताया था कि गुरु से कौन से प्रश्न पूछने चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। बहुत सारे उदाहरण दिए थे उन्होंने, उत्तम श्रेणी का प्रश्न, जिज्ञासा इत्यादि। और यहाँ पे कश्यप मुनि एक प्रमाणिक गुरु का पूरा आइडियल रोल मॉडल, आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि एक प्रमाणिक गुरु को किस प्रकार से शिष्य को शिक्षा देनी चाहिए, किस प्रकार से उसे आचरण करना चाहिए। और श्री प्रभुपाद का तात्पर्य भी इसी थीम, इसी शीर्षक, इसी विषय के ऊपर केंद्रित है कि परंपरा सिस्टम क्या है, गुरु परंपरा का जो जो विधि है ये है क्या। तो यहाँ पे कश्यप मुनि कह रहे हैं एतन्मे भगवान पृष्ठ प्रजा कामस्य पद्मजः, कि एक बारी पद्मज अर्थात जो कमल से उत्पन्न है कौन, ब्रह्मा जी, और वो बोल रहे हैं कि मैंने अत्यंत शक्तिशाली भगवान भगवान पद्मज ब्रह्मा जी से जब पूछा, क्या पूछा, पृष्ठ पूछा प्रजा कामस्य, तो मैंने उनसे जिज्ञासा की थी, कब की थी, जब प्रजा कामस्य, क्योंकि मैं प्रजापति हूँ या प्रजा उत्पन्न करने की मेरी इच्छा थी। तो मैंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि किस प्रकार से भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है। तब ब्रह्मा जी ने यही उपदेश दिया, किस प्रकार से, व्रतम केशव तोषणम, एक व्रत बताया मुझे जिससे भगवान केशव तुष्ट होते हैं, भगवान भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं। तो बोले यही विधि मैं अब आपको बताऊंगा। तो प्रामाणिक गुरु यही होते हैं, प्रभुपाद जी कहें, जो किसी विधि का निर्माण नहीं करते, वो जो गुरु साधु शास्त्र के द्वारा जो विधि उन्हें प्राप्त हुई है उसी को आगे बतलाते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद को मिलने के लिए एक प्रेस रिपोर्टर आए इंटरव्यू के लिए, और ये प्रभुपाद तिरुभाव के दिन एक भक्त ने अपने गुणगान में बोला था। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने बोला कि स्वामी जी आप तो कुछ नया नहीं बता रहे हैं, ये सब तो पहले से जो शास्त्र में लिखा है वही बता रहे हैं कुछ, है ना। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि अरे पर मैं कुछ नया देने के लिए आया हूँ। वो तो सोच रहा था कि प्रभुपाद जी को मैं कि आप क्या नया दे रहे, कुछ भी आप तो दे रहे विशेष नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसे कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिया, थैंक यू आप सिद्ध कर रहे हो कि मैं प्रामाणिक गुरु हूँ, कि मैं कोई नई विधि का निर्माण नहीं कर रहा हूँ, मैं वही दोहरा रहा हूँ जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है, जो मैंने अपने गुरु महाराज से सुना है। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु अर्थात जो अपना मत नहीं बोलते या बताते, रातर जो शास्त्रों का मत है, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ मत है उसी को बताते हैं, दैट इज स्पिरिचुअल मास्टर। यही है परंपरा सिस्टम। प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि शिष्य परंपरा की जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो कुछ भी नया निर्माण नहीं करते हैं। गुरु अपने शिष्य को उपदेश देने के लिए किसी नई विधि का निर्माण नहीं करता, अर्थात गुरु हमेशा वही बताते हैं कि जब उन्होंने अपने गुरु से सुना है। एक बार मैं जो गोपाल कृष्ण महाराज के पास गया एक प्रश्न लेके, तो मैं बोला महाराज मन बहुत परेशान करता है, माइंड कंट्रोल अनकंट्रोल करता है, तो क्या किया जाए मन कंट्रोल करने के लिए। तो महाराज ने बड़ा हंसते उत्तर दिया, बोले मेरा भी यही प्रश्न था और यही प्रश्न लेके मैं प्रभुपाद जी के पास गया था। और कह रहे तो मैं और जिज्ञासा हो गई, प्रभुपाद जी क्या उत्तर दिया होगा महाराज को। और महाराज बोले, प्रभुपाद ने बोला मेरा मन भी मुझे परेशान करता है। तो है तो प्रामाणिक गुरु अर्थात जो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अपने प्रामाणिक को सुना है उन्होंने उसको दोहराना। तो ऐसे ही इस विधि का पालन तो भगवान भी स्वयं करते हैं। गीता में 4:19 के अंदर भगवान लिख रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञान अग्नि तत्त्व कर्माणं तमाहुह पंडितं बुधः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। भगवान इन्हें कह रहे कि तमाहुह अहम बुधः, कि मैं कह रहा हूं, बोले कि जो महान विद्वान जन है पंडितम बुधा, जो पंडित हैं, जो विद्वान जन हैं, जो साधु पुरुष हैं, वो भी उसे ऐसा, उनका भी यही मत है। यानी मैं क्या कर रहा हूं, उनका मत केवल दोहरा रहा हूं। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध के अंदर सबसे बड़ा जो चैप्टर है 87 प्रेयर्स बाय पर्सोनिफाइड वेदा साक्षात वेदा द्वारा स्तुति, उसके अंदर परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा शिवदेव गोस्वामी से कि वेद किस तरह परब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करते हैं, जबकि वेदों में तीन गुणों द्वारा नियंत्रित भौतिक जगत का वर्णन है और ब्रह्म में तीनों गुण सर्वथा परे हैं। तो उनका प्रश्न ये है कि जो वेद हैं त्रिगुण ने विषया वेद वादरता पार्थ नान्य दस्ती निवादिन यामिमा पुष्पिता वाचम प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ति निवादिनः। तो कि वेदों के अंदर तीन गुणों का के विषय के बारे में वर्णन किया गया है, तो किस प्रकार से डायरेक्टली वो परब्रह्म को अप्रोच कर सकते हैं जबकि परब्रह्म तीनों गुणों से परे है। तो शुकदेव गोस्वामी से ये प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने। तो परीक्षित महाराज ने उत्तर में क्या दिया, बोले देखो एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि घूमते घूमते, हाँ क्वेश्चन ये है कि जो वेद हैं किस प्रकार से एब्सोल्यूट ट्रुथ जो परम सत्य हैं परब्रह्म हैं उनका उल्लेख करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि वेदों में जो अधिकांश विषय हैं वो तो तीनों गुणों के बारे में हैं, कर्म कांड इत्यादि के बारे में है, और जो परम ब्रह्म है वो त्रिगुणातीत है, तो वेद कैसे डायरेक्टली उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं उसका उत्तर, तो बहुत बड़ा अध्याय है जो कई दिन लग जाएंगे पढ़ने में, लेकिन जो सब मुख्य बात थी शुकदेव को समझे उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, नारद मुनि गए नारायण ऋषि के पास बद्रिक आश्रम में, तो देखा कि भगवान जो है उच्च स्तर के वासियों से घिरे हुए हैं, कुछ अपने भक्तों से घिरे हुए हैं, और तो नारायण ऋषि को और उनके संगियों को नारद मुनि ने प्रणाम किया और जो है यही प्रश्न उनसे पूछा। किसने पूछा, नारद मुनि ने नारायण ऋषि से, नर नारायण ऋषि उनमें से जो नारायण है जो बड़े भाई हैं उनसे पूछा सेम यही प्रश्न, तो सुखदेव गोस्वामी क्या रेफरेंस दे रहे हैं कि पहले भी देखो ऐसे बातचीत हुआ था। अब ठीक है, देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। तो भगवान ने वर्णन क्या किया कि देखो यही प्रश्न एक बार पहले जनलोक के वासियों ने पूछा था, किससे? सनंदन ऋषि से। और सनंदन ऋषि ने बड़े विस्तृत जो है रूप से स्तुतियां सुनाई उन्हें, किसकी? वेदों द्वारा की गई स्तुतियां सुनाई। तो अर्थात परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि यही प्रश्न नारायण ऋषि से पूछा, और नारायण ऋषि बता रहे हैं कि जनलोक के वासियों ने यही प्रश्न सनंदन ऋषि से पूछा। मैं वही आपका एड्रेस वर्णन कर रहा हूं, नो कंकॉक्शन, विद रेफरेंस, पूरा रेफरेंस देके बोला, यहाँ ये डायलॉग हुआ था इनके बीच के अंदर और मैं आपको यही वर्णन दे रहा हूँ। ऐसे ही हमने सप्तम स्कंद जब पढ़ा था तो उसके अंदर भी परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा, जब छठे स्कंद के अंदर देखा कि भगवान तो बहुत पक्षपात कर, ऐसा लगता है कि भगवान ने पक्षपात किया है देवताओं के प्रति, मरुद्गण इंद्र इत्यादि, इंद्र से इतना गलती हुआ लेकिन भगवान ने हर बार ही बचा लिया उसको, उसने विश्वरूप का वर्णन वध कर दिया, ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया और बृहस्पति का अपमान कर दिया, तो ऐसा लग रहा है कि भगवान जो है बहुत पार्शियल है। तो ये प्रश्न पूछा इन्होंने परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि देखो यही एक बारी क्या हुआ, राजस्वी यज्ञ के अंदर जब शिशुपाल का वध हो गया तो उसका जो आत्मा है वो भगवान के अंदर शरीर विलीन हो गई, तो युधिष्ठिर महाराज ने भी यही प्रश्न पूछा नारद मुनि से, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो नारद मुनि ने उत्तर दिया किसको, युधिष्ठिर महाराज को। अगेन नारद मुनि सुखदेव गोस्वामी फिर रेफरेंस दे रहे, अपना कुछ भी नया नहीं। अगेन उसके बाद महत्वपूर्ण हमारे आश्रम के नोटिस बोर्ड पे एक भक्त ने श्लोक लिखा है, तस्य में अनुरक्त प्रश्रितस्य हतैः न सह शतधानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। नारद मुनि के प्रसंग में श्लोक आता है, नारद मुनि अपना पूर्व जन्म बता रहे हैं कि देखो पूर्व जन्म में एक बालक था लेकिन मेरे अंदर विशेषता क्या हुआ कि जो चार भक्ति वेदांत आए थे, जो मुनि आए थे, भक्त आए थे, उनके प्रति बड़ा आसक्त था, अनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैः न सह, और मैं बहुत आज्ञाकारी था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे, मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी, मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। इसका ये है 1:5:29 पहला स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 29, जिसमें प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर, जो ये तात्पर्य उसी के लगभग लगभग समान तात्पर्य है। शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक योग्यताएं हैं, क्या क्या? स्वाधुओं के प्रति आसक्ति, नम्र आचरण, हतैः न सह सेवा करके पापों से मुक्ति, हृदय में उनके प्रति आसक्ति, इंद्रिय निग्रह दान्तस्य इंद्रियों को वश में करना, और मन तथा तन से दृढ़ता से साधुओं के मार्ग का अनुगमन करना, साधु मार्गानुगमन। तो उसे बता रहे ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए, उसे छद्म भक्त से गुमराह नहीं हो जाना चाहिए, स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल और विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान के शरण में रहता है, वह भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्य को उनके सेवक रूप में जानता है, केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। नवदीक्षित भक्त को शुद्ध भक्ति श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए, उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए, उपदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। ये लक्षण है उस भक्त के जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। तो वो भक्त जो सफलता प्राप्त भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त दृढ़ प्रतिज्ञ है, उसे इसका पालन अवश्य करना चाहिए। और फाइनली एक और ऐसे तो बहुत सारे रेफरेंस भागवत में मिल जाएंगे, मैं बहुत सिलेक्टेड रेफरेंसेस ले रहा हूँ, और एक और प्रमुख यहाँ सुखदेव गोस्वामी हम देख रहे हैं बारंबार कोट कर रहे हैं, उनके शिष्य उनसे सुना जिन्होंने बोलते सूतक गोस्वामी, और ये सूतक गोस्वामी को नैमिषारण्य के ऋषियों ने चुना था कि आप बताइए हमें श्रीमद् भागवतम को। तो श्रीमद् भागवतम की महिमा बताने के बाद में वो आखिरी श्लोक में बता रहे हैं, तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रशे भूरितेजसः अहं चाते गमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथा धीतं यथा मति। सूत गोस्वामी कह रहे हैं ये 1:3:44 तीसरा अध्याय का पहला स्कंद, तीसरा अध्याय का आखिरी श्लोक 44वां श्लोक, वो बता रहे हैं कि हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस तरह निविष्टस्थ अनुग्रह उनकी कृपा से मैंने महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा और जैसा मैंने आत्मसात किया, यथाधीतम यथामति। वो कह रहे हैं कि जो मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुना है, समझा है, जितना समझा है उतना ही मैं आपको बताऊंगा। और अगले श्लोक के अंदर फेमस श्लोक 141 उसके अंदर श्रील प्रभुपाद जी साक्षात्कार का अर्थ बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम की अनुभूति क्या होती है, रियलाइजेशन क्या होता है, उसकी परिभाषा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु बनने के लिए, या गुरु के कर्तव्य बेसिकली कि वह प्रामाणिक हो। प्रामाणिकता के एक ही लक्षण है कि वो एज इट इज जो उनके गुरु ने बताया उसको आगे दोहराए, अपना ना कोई एडिशन करे ना कोई सब्ट्रैक्शन करे। और यही बात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सबको बोला, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमार आज्ञा है गुरु हरिय तार देश, कि मेरी आज्ञा से आप सब गुरु बनो, जिसको मिलो उसे कृष्ण का उपदेश दो। और प्रभुपाद जी कहते थे प्रचार करना बहुत सरल है। क्या सरल है? आपने जो मेरे से सुना वो आगे दोहराओ। और प्रभुपाद जी एक लेक्चर लेकर मेडिटेशन में शिष्यों को बता रहे हैं कि जस्ट लाइक यू आर हियरिंग फ्रॉम मी दैट कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, आप मेरे से सुन रहे हो कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बस इतना आपने जान लिया, अन्य को जाके यही बताओ कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, यही प्रचार है। उसमें कुछ एडिशन डाइल्यूशन मत करो, किसी प्रकार का कुछ योग या कुछ जोड़िए मत, कुछ घटाइए मत। ये प्रामाणिक गुरु, जो आपने प्रामाणिक गुरु सुना उनके वचन को आगे बढ़ाना। तो मैं दो तीन थीम के विषय में चर्चा करूंगा 5-5 मिनट के लिए, अगले 15 मिनट हमारे बचे हैं। पहला है ये प्रामाणिक गुरु क्या है, और दूसरा विषय रहेगा जो प्रभुपाद जी इस श्लोक में लिख रहे हैं परंपरा ऑफ मर्सी, ये कृपा की गुरु परंपरा क्या होती है, और तीसरा प्रामाणिक शिष्य कैसे बना जाए। तो प्रामाणिक गुरु जैसे बताया उनका कर्तव्य क्या है, उनका तो ड्यूटी है या कह लीजिए एक कार्यशैली है एक पोस्टल पियोन की तरह, जिस पर डाकिया होता है। डाकिये के अगर आपको 10 लाख का मनी ऑर्डर देने के लिए, ये आवश्यक नहीं है कि डाकिये के पास 10 लाख रुपए होना चाहिए, लेकिन डाकिये की क्वालिफिकेशन ये नहीं है। डाकिये की क्वालिफिकेशन है कि जैसा उसको मनी ऑर्डर मिला है जितने आगे दे देने का। तो उसी प्रकार से ये जो गुरु है ना, ये भगवान के इस प्रकार के डाकिया हैं, पोस्टल पियोन प्रभा जी वर्ड यूज करते थे, मतलब बहुत ही नम्र काम करना। अभी डाक देने वाले को थोड़ी कोई बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है, उसी प्रकार के भगवान के संदेश वाहक हैं प्रामाणिक गुरु या गुरु परंपरा में। तभी मैंने वो भजन गाया था आज जो श्रील भक्ति सर ठाकुर लिख रहे हैं, कैसे कृष्ण होते चतुर्मुख होए ब्रह्मा सेवन मुख, किस प्रकार कृष्ण भगवान से और फिर आगे ब्रह्मा जी फिर नारद मुनि व्यासदेव के द्वारा ये परंपरा आगे आती जा रही है। और सारे गुरु जिस गुरु परंपरा के अंदर हैं वो इसी प्रकार से भगवान के संदेश वाहक भगवान के दूत के रूप में कार्य कर रहे हैं, और वे सब ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है, एक पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम अर्थात जैसे हमारे मंदिर में सारे शीशे पारदर्शी हैं, इस शीशे से मैं देख सकता हूँ वो पार में क्लियरली क्या है, कि वहां पे मैथलेस गिफ्ट शॉप है, वहां गरुड़ जी है, वहां पे काउ स्टॉल लगा है, वहां पे बुक गीता डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन है, वहां पे नोटिस बोर्ड है, वहां पे कृष्ण भगवान जंगल से आ रहे हैं वापस गाय चराते हुए। तो ये शीशों से हम पारदर्शी इस पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से गुरु का या एक लीडर का, प्रचारक का, एक आध्यात्मिक नेता का कर्तव्य यही है कि वो शिष्य या अपने सबॉर्डिनेट और भगवान के बीच में एक पारदर्शी माध्यम हो, अर्थात भगवान उसके माध्यम से शिष्य को देख सके और शिष्य उनके माध्यम से भगवान की अनुभूति कर सके। और ये बहुत ही मुश्किल कार्य है, ये आसान कार्य नहीं है। कैसे? क्योंकि शिष्य को साफ रखने में मेहनत लगती है, गंदा करने में तो स्वाभाविक रूप से हो जाता है, है कि नहीं? ये शीशा थोड़ा गंदा हो जाएगा, धूल की जब लेप जम जाएगी इसके ऊपर, तो हमें उस पार से ये पार देखना और ये पार से वो पार देखना मुश्किल हो जाएगा, क्लियरली नहीं दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि प्रामाणिक गुरु किसी भी प्रकार का मिश्रण करते हैं, कुछ घटा देते हैं कुछ बढ़ा देते हैं, तो भगवान की अनुभूति शिष्य को नहीं हो सकती और शिष्य भगवान की कृपा को, भगवान कृपा उसको प्राप्त नहीं हो पाती। इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत बल दे रहे हैं कि किस प्रकार जो गुरु भगवान की अभिव्यक्ति होते हैं, ना, भगवान के मैनिफेस्टेशन एक्सपेंशन है और जो है उसे एक, इसीलिए उसे प्रामाणिक होना चाहिए। ये प्रामाणिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी प्रकार का स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए उसके अंदर, है ना। सो बोनाफाइडनेस, एक बार जब गोपी प्राणनंद प्रभु आए थे तो वो बोनाफाइड वर्ड का टर्म बता रहे थे कि प्रभुपाद ने ये वर्ड यूज किया हमारे शास्त्र में, बोनाफाइड गुरु। ये बोनाफाइड गुरु क्या होता है, यू नो, ये बोनाफाइड एक लीगल टर्म है, कानूनी टर्म है, यू नो, दैट मींस इन गुड स्टैंडिंग ऑफ, बेसिकली इसका इंग्लिश अर्थ है इन गुड स्टैंडिंग ऑफ, लाइक ये लीगल टर्म जब यूज करते हैं, ये कानूनन जब शैली कानूनन शब्दकोश में से यूज करते हैं, अर्थात प्रमाणिक गुरु अर्थात जो कृष्ण से अपने गुरु से उस विधि से वो पूर्णतया कनेक्टेड हो। और हमारे स्कॉन में तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्रील प्रभुपाद, वो प्रमाणिक शिष्य थे इसीलिए प्रमाणिक गुरु थे वो। यही है परंपरा ऑफ मर्सी, कृपा की परंपरा। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि मैं इंग्लिश में वो प्रामाणिक इसीलिए है एक गुरु क्योंकि उसे अपने प्रामाणिक गुरु की कृपा प्राप्त हुई होती है। अर्थात कोई भी अपने आप गुरु नहीं बन सकता, स्वयं सिद्ध गुरु ना, या डेमोक्रेसी से वोट चुनाव करके आप किसी को प्रमाणिक गुरु नहीं बना सकते। आज सुबह ही मैं प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था, प्रभुपाद जी कह रहे हैं दिस डेमोक्रेसी इज फॉर द फूल्स एंड रास्कल्स, फूल्स एंड रास्कल सेलेक्ट अनदर फूल एंड रास्कल टू लीड देम। तो प्रभुपाद जी इसके बता रहे थे प्रथम अध्याय के ऊपर गीता के, उसके ऊपर अर्जुन के विषाद योग के ऊपर प्रभुपाद जी लेक्चर था, तो उसे प्रभुपाद बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सब आज बैठेंगे चुनाव किया जाए कौन प्रमाणिक गुरु बना देते हैं किसी एक व्यक्ति को, सब उसको वोट देंगे, नहीं। प्रमाणिक गुरु वो है, अ लीडर इज वन इज नॉट वन हु हैज पावर बट वन हु इज एम्पावर्ड। एक जो नेता है, लीडर है, प्रमाणिक गुरु है, वो नहीं है जिसके पास बहुत बल है, शक्ति है, कुछ रुतबा है, कुर्सी है, पोस्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो है जिसको अपने प्रमाणिक गुरु की कृपा प्राप्त हुई है, ही इज वन हु इज एम्पावर्ड। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और श्रील प्रभुपाद इसके आदर्श उदाहरण थे। प्रभुपाद बोस्टन में गए और वहां पे देखते ही उनको तो इतना इतने रजोगुण तमोगुण की जगह में कैसे प्रचार करूंगा, लेकिन हृदय का उद्गार क्या निकला होगा, बड़ो कृपा कैला कृष्ण अधमेर प्रति, कि हे कृष्ण आपने मेरे जैसे अधम जीव के प्रति बहुत कृपा की है, कीला किया नीले है तम करो एवे गति, कि जरूर आपका कुछ पर्पज होगा इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया है, मैं तो एक अधम शूद्र जीव हूँ। अब देखिए प्रभुपाद जी की विचारधारा, अपने आप को वही यही सोच रहे, देखो महाप्रभु की आज्ञा का आज्ञा को सिद्ध करने के लिए इधर आ गया मैं, जो भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु की पृथ्वी आचार नगर आदि विराम, आई एम द चोजन वन, इज थिंकिंग आई एम सो फॉलन बट स्टिल कृष्ण इज सो ग्रेट, ही हैज चोजन मी, कृष्ण भगवान इतने महान है मुझे चुना है। और कैसे, जो दूसरा प्रार्थना लिखा उसमें क्या, श्री सिद्धांत सरस्वती शचि सुत प्रियति कृष्ण सेवा जा तुलनाय, से से महंत गुरु जगत रमधेरु कृष्ण भक्ति दे ठाए ठाए। वो बोल रहे हैं कि श्री सिद्धांत सरस्वती शचि सुत प्रियति की भक्ति सरस्वती ठाकुर, जो कि शची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु के श्री शचि सुत प्रियति कृष्ण सेवा जा तुलनाय, और उनके समान कृष्ण का सेवक नहीं है कोई। तारक इच्छा बलवान पाश्चात्य के ठान ठान हो जाते गौरांगे रनाम, क्योंकि उनकी बलवान इच्छा है कि पाश्चात्य देशों के अंदर ये हरे कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार हो, इसलिए प्रचार हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं आया हूं यहाँ पे, लेकिन मैं उनकी इच्छा का उपकरण हूं केवल, आई एम जस्ट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज डिजायर। श्री प्रभुपाद तो थॉरली कनेक्टेड टू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। मैंने हिज ग्रेस नाम भूल गया, रविंद्र स्वरूप प्रभु, रविंद्र स्वरूप प्रभु प्रवचन दे रहे थे इसको आगे इतिहास के बारे में, या गौड़ीय वैष्णव इतिहास के बारे में बता रहे थे, और बता रहे थे कि गौड़ीय मठ के समय से ही जैसे भक्ति सरस्वती का नाम था विमला प्रसाद और उनके एक भाई थे ललिता प्रसाद, और गौड़ीय मठ के स्थापना से ही कि भगवान को प्राप्त करने के दो विधि में से एक ही चैतन्य महाप्रभु ने चुना, संकीर्तन विधि और ध्यान विधि। चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन विधि को चुना क्योंकि कलयुग के अंदर ध्यान करना बहुत मुश्किल है, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उसी विधि को अपनाया। लेकिन जो उनके भाई थे भक्तिनाथ ठाकुर के पुत्र ललिता प्रसाद, वो ध्यान विधि की और मतलब वो ध्यान विधि का पालन करते थे और प्रचार करते थे, तो और शास्त्रों में भी है वो, तो उस प्रकार से तो कई सारे शिष्य भी भक्तिनाथ ठाकुर के जो है उनको थोड़ा द्वंद्व रहता था एक फिलोसॉफिकली कि ध्यान विधि करना चाहिए संकीर्तन विधि क्यों, भक्तिनाथ इतना संकीर्तन बल देते हैं। और थोड़ा बहुत एक सटल लेवल पर एक फिलोसॉफिकल डिफरेंस भी वहां पर रहता था, और उनके जाने के बाद और भक्तिनाथ ठाकुर रहने के बाद वो डिफरेंस और बढ़ा भी, और बाद में तो खैर अलग प्रकार से गौड़ीय मत का विभाजन हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी भक्तिनाथ ठाकुर के 100% एज इट इज फॉलोअर थे, किस प्रकार से रविशंकर को ये बता रहे हैं, उन्होंने भी एज इट इज संकीर्तन विधि को चुना। तभी देखे टॉम्स स्क्वायर पार्क में जब प्रभुपाद जी थे तो कीर्तन ही कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र, इसी बल के ऊपर उन्होंने पूरे विश्व के अंदर ये हरे कृष्ण मूवमेंट को स्थापित कर दिया। जब प्रभुपाद जी का संन्यास हो रहा था तभी महामंत्र उच्चारण हो रहे थे तो बोला थोड़ा श्लोक कम श्लोक तेज कर दो, प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं नहीं कीर्तन तेज करो वो तो चलता रहेगा क्योंकि कलयुग का धर्म है हरे कृष्ण संकीर्तन। और प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि मैं तो भक्ति श्याम ठाकुर से कभी भी जुदा नहीं हुआ हूँ, कभी अलग नहीं हुआ हूँ, आई नेवर बीन सेपरेटेड फ्रॉम माय गुरु, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। और एक और डिसाइपल प्रभुपाद बता रहे थे अपने गुणगान के अंदर प्रभुपाद तेरे भाव पे, कि प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि उनके बंगाल में एक कहावत है या मान्यता है, एक प्रथा है कि जब पिता गुजरने वाले होते हैं वृद्ध हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो बेटे को अपना व्यापार दे देते हैं, धंधा दे देते हैं जो उनका काम धंधा होता है, और बेटी को क्या देते हैं, मकान दे देते हैं। ऐसा उन्होंने बताया कि बंगाल में बंगाली भक्त होंगे तो शायद वहां का कल्चर इसी प्रकार से। तो एनीवे तो प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे थे कि तो बोले उसी प्रकार से मेरे गुरु महाराज ने जो है मिशन मेरे को दे दिया और मठ सारे मेरे गुरु भाइयों को दे दिया जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है वो मुझे दे दिया और जितने गौड़ीय मठ है गुरु भाइयों को दे दिए, है कि नहीं। तो इसीलिए प्रमाणिक गुरु यदि किसी प्रसन्न होते हैं तो उसको हम मिशन देते हैं, वो महत्वपूर्ण है यू नो फैसिलिटी देना, अर्थात जो लोग मैराथन में जा रहे हैं वो ज्यादा यू नो गुरु परंपरा से जुड़े होंगे जो प्रचार कर रहे, राधर देन वो जो मंदिर में बैठे आराम से यू नो और ज्यादा कुछ सेवा पूजा नहीं कर रहे हैं। तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मिशन में पार्टिसिपेट करना, है ना। तो इस प्रकार से तो भक्तनाथ का बिजनेस शिला प्रभुपाद के पास और भक्तनाथ का घर उनके गुरु भाइयों के पास। तो मैं कल रुकुंद कृष्ण से इसी श्लोक के बारे में चर्चा करा, तो एक बड़ा अच्छा ऑन द स्पॉट एक प्रोस कंपोज कर दिया उन्होंने, तो आई जस्ट रोट इट ऑन माय लैपटॉप, यू नो। उन्होंने बोला मिरेकल्स हैपन व्हेन वी एक्ट एज पियॉन एंड मिसहैप्स हैपन व्हेन वी एक्ट ऑन अवर स्ट्रेंथ, कि जब हम इस परंपरा की कृपा पे आश्रित होकर कुछ सेवा करते हैं तो बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं, लेकिन अपने बलबूते पे हम कार्य करते हैं ना तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, है कि नहीं। तो ये प्रचार करना हमारी दक्षता के ऊपर, हमारे स्ट्रेटेजी के ऊपर या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो करना बहुत आवश्यक है ना भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऑर्गेनाइज करना, बाहर लोग इतना ऑर्गेनाइज करके माया का प्रचार कर रहे हैं तो कृष्ण भक्त थोड़ी देर को होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज करें कृष्ण भक्ति का प्रचार ना करें, लेकिन केवल ऑर्गेनाइज करने से केवल स्ट्रेटेजी बनाने से और से प्रचार नहीं होता। ये जानना चाहिए प्रचार या सेवा केवल और केवल कृष्ण शक्ति के द्वारा होती है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कली काले धर्म हरि नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कि बिना कृष्ण की कृपा बिना गुरु परंपरा की कृपा के द्वारा आप सेवा में सफल नहीं हो सकते। आप प्रचार में जा रहे हैं, फंड कलेक्शन में जा रहे हैं, मैराथन में जा रहे हैं, हम सोचे मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा लेक्चर दिया, मैंने ऐसा कीर्तन किया, मैंने ऐसा ये किया, इसीलिए व्यक्ति ने गीता स्पॉन्सर कर दिया, हरे कृष्णा सॉरी दैट्स नॉट द की, द की इज द मर्सी ऑफ गुरु परंपरा। जितने प्रामाणिक हम होंगे उतना प्रामाणिक कृपा हमारे द्वारा ट्रांसफर हो सकता है। हमें तो सिर्फ एक प्रामाणिक एटीएम मशीन बनना है, ऑल टाइम मर्सी मशीन है, लाइक दैट, नॉट ऑल टाइम मनी बट ऑल टाइम मर्सी मशीन. ऐसा प्रामाणिक मशीन बनना बहुत आवश्यक है, प्रामाणिक पियोन बनना बहुत आवश्यक है कि हमारे द्वारा गुरु परंपरा की कृपा आगे ट्रांसफर हो सके. क्योंकि अधिकांश प्रचार करते हैं, अब देखिएगा बुरा मानेगा, हमें से अधिकांश सभी पुराने भक्त हैं, किसी ना किसी लेवल का प्रचार हम सब करते हैं, पर अधिकांशतः हम कृष्ण की कृपा को ट्रांसफर नहीं करते, कृष्ण की कृपा को ब्लॉक कर देते हैं, यू नो, अपने आचरण के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपनी इम्प्यूरिटीज के द्वारा, जिसके कारण यू नो कई बार प्रचारक तो सोचता ही सच ए वंडरफुल डिवोटी बिकॉज ऑफ मी, लेकिन उन्नत प्रचारक होता है तो वो सोचता है ही इज अ वंडरफुल डिवोटी इन स्पाइट ऑफ मी, यू नो, कि ये भक्त कितना सहिष्णु है जो मेरे द्वारा प्रचार करने पर भी वो भक्त बन गया है, यू नो, लाइक थिंकिंग कि देखो मैं कृपा कर रहा हूं और ये भक्त बन रहा है, इट हैज टू बी अदर वे अराउंड, एंड दैट्स व्हाट प्रभुपाद वाज थिंकिंग. अब देखिए जब प्रभुपाद जी का तिरुभाव, भक्ति शरण का तिरुभाव दिवस था जिस दिन, उस दिन प्रभुपाद जी का प्रवचन चलाया था हमने 1973 आई बिलीव द लॉस एंजेलिस. अब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद एंड में रोने लग जाते हैं प्रवचन के, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं I want to thank all of you because you are helping me in serving my, you are assisting me in fulfilling the desire of my spiritual master. कि आप सब मेरे गुरु महाराज की आज्ञा का को पूरा करने में मेरी सहायता कर रहे हैं. एक अन्य लेक्चर के अंदर प्रभुपाद जी भी ऐसे रोने लग जाते हैं और बोलते हैं कि देखो मेरे गुरु महाराज ने आप सबको भेजा है, आप सब तो मेरे गुरु महाराज के प्रतिनिधि हो, हालांकि प्रभुपाद के शिष्य है वो, नहीं गुरु महाराज के प्रतिनिधि. क्यों? प्रभुपाद कहते हैं कि देखो मेरे गुरु महाराज जानते थे कि मैं बहुत नालायक हूँ और उनकी इच्छा बहुत बलवान है, उनकी आज्ञा बहुत महान है और मैं अकेले पूरा नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्या किया आप सबको भेजा है ताकि मैं उनकी आज्ञा पालन कर सकूं. इसीलिए आप सब क्या हो, मेरे गुरु महाराज के प्रतिनिधि हो. तो इस प्रकार से जो है, तभी प्रभुपाद जी हमेशा अपने आप को केवल एक इंस्ट्रूमेंट के अलावा कुछ नहीं समझते थे, कृपा के वो माध्यम उपकरण, तभी प्रभुपाद सफल थे. हम भी अपने जीवन तभी सफल बन सकते हैं जब एज अ प्रचारक यू नो हम सब इस विषय के ऊपर चर्चा करें, इस विषय पे ध्यान दें किस प्रकार से हम प्रमाणिक माध्यम बन सकते हैं प्रचार करने का, और उसके लिए पहला कर्तव्य एक ही है, to the degree we are connected to our guru parampara, you know, I'm just making a statement in English. Connectivity is more important than proximity. मैं कई बार उदाहरण दिया लेता हूँ जिस प्रकार से बिजली का स्विच है एक, वो हो सकता है कई हजार किलोमीटर पावर हाउस, कई किलोमीटर पावर हाउस से दूर हो, लेकिन आप उसमें हाथ डालेंगे तो वही झटका देगा जो पावर हाउस के पास हो. ऐसा नहीं कि पावर हाउस के पास में ज्यादा बिजली है और दूर हो गया तो बिजली कम है, you know? यहाँ पर बड़ा बड़ा स्विच लगा दे लेकिन कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी उसका बल नहीं, पावर हाउस के पास भी क्यों ना हो, लेकिन यदि यहाँ पे कनेक्टेड है पावर हाउस है, बिजली के स्रोत से अगर वो कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर वही बल है, यू नो. तो इसीलिए कृष्ण से डायरेक्ट शिक्षा लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना हमारा कृष्ण से कनेक्टिविटी है, कितना हम जुड़े हुए हैं गुरु परंपरा के माध्यम से, ना यह अधिक इम्पोर्टेंट है. नहीं, हमारा डायरेक्ट समझ होना चाहिए कृष्ण से, गुरु महाराज से नहीं, जो इम्पोर्टेंट है कितना आप कनेक्टेड हो, यही शिष्य की योग्यता है. ये कनेक्टिविटी जब तक रहेगा, शिष्य अपने हृदय में गुरु परंपरा की कृपा को रिलीज कर पाएगा, एक्सपीरियंस कर पाएगा, उसका अनुभव कर पाएगा और उसको बांट पाएगा. अन्यथा हमारा प्रचार का पात्री को आए थे, बोले कुछ नहीं होगा, खाली इतना कि यहाँ माइक के आगे जो कुछ हवा के मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैं हिला दूंगा, ये ज्यादा मेरे मुंह से हवा निकल रही होगी, उससे माइक की सफाई हो रही होगी और कुछ नहीं, किसी का हृदय ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला, है ना, कुछ नहीं, खाली बस बोल रहे हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे होंगे मेरे मुंह के आगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला लोगों के अंदर, वो भक्त नहीं बनने वाले, है ना, उनका हृदय शुद्ध नहीं होने वाला, कृष्ण प्रेम नहीं बनने वाला, यदि जो प्रचारक है वो अपने हृदय में शुद्धिकरण का कार्य नहीं करता, है ना, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम विषय निर्मत शरणाम सताम, ईर्ष्या से रहित, और महाप्रभुपाद जी वहां पर और भागवतम के प्रारंभ के अंदर ही भागवतम के स्पीकर की क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, क्या क्या उसके अंदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए. तो हम अपने जीवन के अंदर कैसे प्रामाणिक शिष्य बन सकते हैं, मैंने सिर्फ उसके 3 पॉइंट लिखे हैं, वो बता के विराम देता हूं. पहला, ये कनेक्टिविटी मैनेजरियल कनेक्टिविटी नहीं है कि ठीक है मैं प्रभु जी का सेवा कर रहा हूँ, आंटी इनके अंडर हूँ, उनके ऊपर हूँ, दैट इज ओके, यू नो, कोऑपरेशन, दैट इज नॉट सरेंडर. जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम ठीक है अधिकारियों के साथ कुछ सहयोग कर रहे हैं, तो वो कॉपरेशन है, सहयोग है, उसमें मतभेद भी होंगे, हम बहुमत भी होंगे, सहमत भी होंगे, अलग अलग चीज हमेशा हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कनेक्टिविटी जो है आध्यात्मिक कनेक्टिविटी होती है। तो वो कनेक्टिविटी प्रमाणिक गुरुओं के माध्यम से कैसे, उनके संदेश को सुन करके, है ना, रेगुलर श्रीला प्रभुपाद जी के प्रवचन को, कन्वर्सेशन को सुन करके, उनकी किताब को पढ़ करके, और उनकी कृपा को उनके वाणी के माध्यम से स्वीकार करके, दैट इज फर्स्ट कनेक्टिविटी। या अपने आध्यात्मिक गुरु, गुरु परंपरा से, यू नो, बहुत बार ये आजकल हमारे पास इस्कॉन डिजायर ट्री रहता है, यू नो, डिजायर ट्री अर्थात कल्प वृक्ष, जौन सा टॉपिक, जौन सा स्पीकर, जैसा भी विषय, तुरंत क्लिक करो, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। नहीं, नेटर शॉपिंग करते करते हियरिंग कैसा, सिर्फ हियरिंग नहीं, हियरिंग विद कनेक्शन उन लोगों से जिन पे हमको पूर्ण विश्वास है कि ये, कि उनकी वाणी से मेरे अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए सुन रहा हूं, किसी और हेतु के लिए नहीं, जजमेंटल हियरिंग नहीं, लेकिन उन व्यक्तियों के द्वारा जिन पे हमें पूर्ण विश्वास है, और उनसे याचना करते हुए उस संदेश को स्वीकार करना, अपने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, और नियमित रूप से नित्य भागवत सेवा, दैट्स कॉल्ड कनेक्टिविटी। भगवान की कृपा से मेरे को ऐसे कई सारे भक्तों का संगत प्राप्त होता है, जो नियमित रूप से आधा एक घंटा बैठ करके, या तो प्रभुपाद जी की फोटो लगा के, अपने गुरु महाराज की फोटो लगा के, प्रार्थना करके कि मैं आपके संदेश को सुनने के लिए जा रहा हूँ भगवान, और ऑल गुड टेक्नोलॉजी की, जिनके द्वारा हमें रिकॉर्डेड लेक्चर हमेशा प्राप्त रहते हैं, बुक्स प्राप्त है, प्रभुपाद जी कृपा है, यू नो। तो कई भक्त मैंने देखा पढ़ते हैं सामने प्रभुपाद की फोटो रखते ताकि ध्यान पूर्वक पढ़ सके, मोबाइल को नहीं रखते सामने, वो प्रभुपाद जी की फोटो सामने रखते हैं, हो सकता है मोबाइल पे आगे रखते हैं प्रभुपाद का फोटो, यू नो, सो दैट वी फील कनेक्टिविटी कि प्रभुपाद इज स्पीकिंग टू मी डायरेक्टली। दैट इज वर फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाय रेगुलर हियरिंग इन द मूड ऑफ डिसाइपल, इन सबमिशन, विनम्र भाव से उसको सुनना, क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग, इसलिए रोज सुनना उसे बकायदा, यू नो, वाणी को सुन करके उसे मनन करना, उसको याद रखना, ये पहला। दूसरा, उसके बाद प्रयास करना, एज इट इज फॉलो करना और प्रचार करने के लिए, वैसे ही उसका प्रचार करें बिना एडिशनल डाइल्यूशन के, और यथासंभव उसको अपनाने का पालन करें, यू नो, ऐसा नहीं कि इस कान से सुना इसी कान से निकाल दिया, कई बार ऐसा होता है कि गलती से इस कान तक भी ना निकले, क्योंकि अगर ये कान से निकलने का बना तो हो सकता है कुछ अंदर भी चले जाएगा, कई बार हमारा हियरिंग होता है यहाँ सुनते यहीं से बाहर चले जाता है, तो ऐसा हियरिंग नहीं है ना। तो फिर उसको सुन करके, मनन कर कर अपनाने का गंभीर प्रयास करना चाहिए, हालस वाला प्रयास नहीं कि ठीक है सुन लिया एंटरटेनर नहीं, या फिर ये नहीं यहाँ से सुना यहाँ से बोल देगा, वो थोड़ा हृदय में उसका प्रवेश करके। और इसीलिए तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो है अकाउंटेबिलिटी, कि मैंने क्या वाणी सुनी, क्या अपनाने का प्रयास किया, यू नो, वी कैन स्पिरिचुअल अकाउंटेबिलिटी बहुत आराम से बैठ करके भी हो सकती है, सिर्फ फोटो को भी अकाउंटेबल हो सकते हैं कि मैंने क्या सेवा किया, यू नो, मैं एक भक्त को जानता हूँ, मेरे वरिष्ठ थे वो, उन्होंने उनसे मेरे को बहुत कृष्ण वाहन प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, तो प्रत्येक सुबह वो जपा से पहले क्या करते थे, ऐसा एक मैं क्योंकि लेक्चर देना था तो उन्हीं को याद करते हुए मैं ऐसा डायरी लेके आया, वो ऐसा डायरी रखते थे अपने पॉकेट के अंदर हमेशा, और उसके हर पेज के ऊपर एक डेट लिख देते थे, और उसके बाद अपने पूरे दिन के जो जो सेवा किया उन्होंने, जो जो कार्य किए, और क्या उनकी विचारधारा थी, क्या उनके शब्द थे, कैसे भक्तों से व्यवहार किया, कितना इंद्रित्व के विषय में सोचा, वो लिख लेते थे, क्या सेवा की, क्या चेतना थी सेवा करते हुए, और वो लिखने के बाद जपा से पहले रोज अपने गुरु महाराज को ऑफर करते थे कि कल का दिन मैंने ये अच्छा किया, मैं आपको समर्पण करता हूँ, आपके पास कर पाया, कल के दिन मेरे अंदर ये नित्य के विचार थे, ये विषय का विचार था, कल के दिन मैं ज़्यादा सोया, यू नो, आपका मनन नहीं किया, ये भक्त से व्यवहार ठीक नहीं किया, वैष्णव अपराध हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, शक्ति दीजिए कि मैं जप कर सकूँ अभी बैठ करके, क्योंकि इतने अपराध हो गए, मेरे अंदर योग्यता नहीं है। ऐसा वो 5-7-10 मिनट प्रार्थना करते थे, उसके बाद में अपना जपा चालू करते थे एवरी डे, यू नो। मैंने पूछा आप ऐसा क्यों करते हो, बोला देखो मेरा पूरा जीवन किसके लिए, मेरे गुरु के लिए, और अपने गुरु को मैंने ऑफर ही नहीं किया अपना जीवन, तो क्या फायदा, सो आई एम प्रैक्टिकली अप्लाइंग डेथ इन माई लाइफ, कि मैं याद रख सकूँ कि मैं ना अपने लिए नहीं जी रहा, अपने लिए तो क्या, तरवा किम न जीवन थी, भस्त्रा किम न स्वच्छता किम, ना खादन थी ना मेहनती किम ग्रामे पशु पड़े, पेड़ भी इतना लंबा जीते हैं, है ना, उसमें क्या बड़ी बात है, भस्त्रा किम न स्वच्छता, बेलोज ऑफ ब्लैक में जो भी लोहार की भौंकनी भी जो सांस लेती है उसमें क्या बड़ी बात है, बड़ी बात यह है जब हमारा जीवन किसी के प्लेजर के लिए, प्रमाणिक गुरु के यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद यस्य प्रसादा नगति कुतो, और वो सडनली नहीं बना, उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ता है कि जब भी कर रहे हैं हम उनकी प्रसन्नता के लिए करें, बिकॉज दे वॉन्ट असोसिएट अटेंटिवली। अदर्स हमारे अंदर क्या योग्यता है, यू नो, शक्ति बुद्धि ही योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हार करुणा सा करुणा ना भइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी भवार। तो ये कृपा बहुत आवश्यक है, इसी माध्यम से भक्ति का प्रयास कर पाए, अदरवाइज वी आर यूजलेस, जीरो। लेकिन वो जीरो के आगे वन लगा दिया गुरु मनवर्सी का, तो वो दस सौ एक हजार एक लाख दस लाख एक करोड़ ही बन जाता है। हमारी वैल्यू तब है जब हम वो उपकरण बन सकते हैं गुरु परंपरा कृपा के। तो बोलना बहुत आसान था और इसीलिए मैं भी बोलते हुए जो रेफरेंस थे वो दे रहा था कहाँ से मैंने सुना है, कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया, लेकिन एक गंभीर विषय था, मैं कदम गायक ने बोला था लेने देने के लिए, तो इसीलिए मैंने कुछ बोला शेयर किया। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो मैंने बोला उसको पालन करने का मैं सोच भी सकूँ, पालन करना दूर की बात, बोलना तो आसान है इंप्रेस करने के लिए। तो आप सब कृपा करके प्रार्थना कीजिएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री गुरु परंपरा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो जिन भक्तों को जाना हो वो जा सकते हैं, और अगर क्योंकि इस विषय ऐसा है इस पर कोई प्रश्न होंगे तो मैं सिर्फ प्रयास करूंगा जो मैंने सुना है, जिनको निकलना हो आप जा सकते हैं, क्योंकि समय अधिक हो चुका है। मैंने गुरु परंपरा का सॉन्ग इसी लगाया, लंबा था हालांकि, लेकिन वो बहुत रेलिवेंट था इस थीम के लिए।
धन्यवाद प्रभु जी आपका। मैं पूछना चाहता था, जैसे पर्पट में भी आपने बताया और लेक्चर में बताया, पर्पट से पढ़ के बताया कि बोनाफाइड गुरु क्या होता है, जो अपने गुरु से सुनते हैं एज इट इज दोहराते हैं,
जो
सुनते हैं गुरु का काम बोनाफाइड गुरु का है कि एज इट इज डिलीवर करते हैं मैसेज। तो रियलाइजेशन शेयरिंग का क्या स्कोप है और अपना पर्सनलाइजेशन शेयरिंग का क्या स्कोप है? जैसे देखते हैं वरिष्ठ वैष्णव अपनी रियलाइजेशन शेयरिंग भी करते हैं, एज इट इज का क्या मतलब है, अपनी पर्सनलाइजेशन शेयर करने का क्या मतलब है, उसका क्या स्कोप है?
श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय चार श्लोक संख्या एक, आत्म अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे, उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय का उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके, विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए, खींच तान करके उसका दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए अपितु श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, इसे आत्मसात करना कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद दिस इज रियलाइजेशन। सो यू नो इफ आवर पर्सनल रियलाइजेशन शुड नॉट बी टू ग्लोरीफाई आवरसेल्फ्स, नंबर वन। पर्सनल रियलाइजेशन अपनी आत्म अनुभूति इसीलिए नहीं कि देखो मेरे को कितना अनुभव है कितनी अनुभूति है, इसीलिए अपनी शेखी ही बगाड़नी चाहिए। लेकिन हाँ, इसीलिए हम कभी कर सकते हैं कि गुरु परंपरा की कृपा से, प्रामाणिक भक्तों की कृपा से मुझे भी कुछ अनुभव हुआ, एंड जो मेरा अनुभव है दैट विल सॉलिडिफाई द थीम, यू नो, दैट विल इंक्रीज कन्विक्शन ऑफ द ऑडियंस ऑफ पीपल, यू नो, ऑन द गुरु परंपरा मर्सी, दैट वी कैन शेयर लाइक दैट वी कैन शेयर। और प्रारंभिक अवस्था में हमें जब तक बहुत इंटीमेट सर्कल ना हो पब्लिक में इसको थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे अंदर इतना डिफरेंस क्लियर नहीं होता कब हम अपना गुणगान कर रहे हैं और कब कृपा का गुणगान कर रहे हैं। सो दैट वे, एंड अनदर थिंग, जब रियलाइजेशन शेयर करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी बैक्ड अप बाय सम शास्त्रिक रेफरेंस, कभी हमारी स्पेकुलेशन ना हो, यू हैव टू गेट अ रेफरेंस फ्रॉम शास्त्र। जैसे भक्ति शास्त्री हमने पढ़ा था, डिवोट शुड लाइक लॉयर, जब भी आप बोलो तो कोटेशन है, दिस इज द कोट, द बेस्ट कोटेशन ऑफ आवर बुक्स एंड लेक्चर्स, नॉट इवन द लेटर्स आर वेरी मिसलीडिंग, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, समन्वय करना बहुत जरूरी है उसके अंदर। तो बुक्स आर द बेस्ट मीन्स, यू नो, ऑफ द एपिस्टम, इन द एपिस्टमोलॉजी वी रीड आईडीसी कोर्स, द फर्स्ट एडिशन ऑफ प्रभुपाद परपोर्ट्स। यस, हरे कृष्ण।
प्रभु जी, आपने बताया कि जो डाकिया होता है वो, उसके पास अगर 10 लाख रुपए नहीं भी होते तो इसका मतलब ये नहीं है वो 10 लाख रुपए डिलीवर नहीं कर सकता। और आपने इसको रिलेट किया गुरु से, प्रामाणिक गुरु के कॉन्टेक्स्ट में आपने ये सब बताया। तो इससे हम क्या मतलब,
इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये पता लगता है कि गुरु बनने के लिए आपको परफेक्ट बनना जरूरी नहीं है, डाकिया बनने के लिए अमीर बनना जरूरी नहीं है, उसी प्रकार से गुरु बनने के लिए परफेक्शन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना बोनाफाइडनेस कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। यदि वो डाकिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा ऑथोराइज्ड है, अधिकृत है, तो वो आपको मनी ऑर्डर एज इट इज दे सकता है।
इसमें कंफ्यूजन थोड़ी सी मुझे ये वही समझने में कि इस जैसे जो गुरु है, हम कहते हैं कि गुरु जो हिमसेल्फ इज अ रियलाइज्ड पर्सन, वो जो भी बता रहा है वो रियलाइज्ड, वो उस चीज को रियलाइज कर चुका
है। नो नो नो, दैट्स नॉट श्रील प्रभुपाद सेज, यू नो दैट्स नॉट द क्वालिफिकेशन, गुरु हैज रियलाइज्ड इट, इफ यू स्पीक दैट्स हिज प्रीचिंग।
उसने अगर रियलाइज नहीं भी किया हुआ बट वो एज इट इज आगे इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा है तो वो मॉडिफाइड गुरु।
यस यस, देयर वन कन्वर्सेशन श्रील प्रभुपाद एंड गोपाल कृष्ण महाराज, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ठीक है उसका गुरु मत, अगर रियलाइजेशन नहीं है तो ही कैन एक्ट एज गुरु बट अ प्रोबेशन गुरु लाइक दैट, यू नो।
तो इससे अगर वो खुद उस चीज को नहीं कर रहा और वो
नहीं,
आगे उसको
करना एक बात है, रियलाइजेशन एक बात है।
हाँ ठीक है, अगर वो रियलाइज उसने नहीं किया हुआ उस चीज को, बट तो इसका मतलब है जब वो बोलेगा तो वो थोड़ा सा उसके अंदर एक हॉलोनेस नहीं होगी कि भाई जो वो बोल रहा है वो खुद रियलाइज नहीं है, वो इस चीज को आगे ट्रांसफर कर रहा है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस या फेथ आएगा उस पर।
जी बिल्कुल आएगा। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, किसी ने उनको नृत्य करते हुए देखा, दर्शन कीर्तन करते हुए देखा, किसी का स्पर्श किया वो भक्त बन गया, जब गांव में गया उसका स्पर्श करके अगला व्यक्ति भक्त बन गया, यू नो लाइक दैट। श्रील प्रभुपाद एग्जैक्टली गौर लीला के अंदर, चार महीना हुआ नहीं, भक्त बोला ये कंट्री में जाओ, अनजान कंट्री, अनजान लैंग्वेज, किसी को नहीं जानते, बोले सेंटर खोलो, और बोले क्या करना है प्रभुपाद, बोले जो मैंने आपके देश में किया, करताल उठाओ कीर्तन करो, बोले जय प्रभुपाद, बोल के चले गए, ना पैसा ना कोई जान पहचान, एंड पीपल बिकेम डिवोटीज, यू नो लाइक दैट। वो प्रोसेस इतना पावरफुल है, हम लोग भी जाते हैं प्रचार करते हैं, कहाँ से किसको छुआ, कैसे लोग मिल जाते हैं पता नहीं, लेकिन बन जाते हैं, लोगों में परिवर्तन हो जाता है, नहीं कि नहीं। तो ऐसा थोड़ी है इसका मतलब हमें कोई रियलाइजेशन नहीं बहुत ज़्यादा, या वो नए नए भक्तों को, नौसिखिए भक्तों को बड़ा रियलाइजेशन था, लेकिन पालन का चमत्कार देखते हैं रियलाइजेशन आता है, बोले योग्यता बेचारे किछु नहीं पाए तो हमारे करो ना सर, तो सिंसियरली वो फॉलो करते हैं ना तो उससे रियलाइजेशन आता ही आता है, तभी मिरेकल्स होते हैं वहाँ पे, मिरेकल आने के बाद जो चमत्कार रियलाइजेशन आता है वो अलग रहता है।
तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले हम उस वाइट प्रीचिंग जो है, जो भी वो भक्त है वो पहले उसको आगे प्रचार कर रहे हैं उसी नॉलेज को, और बाद में वो रियलाइज कर रहे हैं प्रचार करते हुए कि हाँ भाई, बाद में रियलाइजेशन भी हो सकते हैं।
स्टेप वन, ही फॉलोज इट इवन विदाउट रियलाइजेशन। साधना भक्ति मीन्स गुरु के आदेश या शास्त्रों के आदेश का पालन करना, उसको अपना अनुभूति नहीं है। जिस प्रकार से डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया आपको, आपकी बीमारी का ये इलाज है, आपको अनुभूति नहीं है कैसे बीमारी दवाई काम करेगी, डॉक्टर का अनुभूति है, लेकिन तो पेशेंट मतलब दवाई खाता है, लेकिन कभी और पेशेंट जो दवाई खाता है उसको अनुभव होता तो क्या प्रचार करता है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये प्रामाणिक डॉक्टर है, दवाई अच्छी देता है, लाइक दैट। उसी प्रकार से साधना भक्ति के नियमों का पालन करो और दूसरों को बताओ लाइक दैट कि आप भी कीजिए, है कि नहीं, तब तक गुरु मत बनिए, यू बिकम अ सीनियर पेशेंट, यू नो सीनियर पेशेंट इज हाफ डॉक्टर।
थैंक यू सो मच।